गहरी नींद हमेशा ऐसे सपने देते हैं जो जब रियलिटी में पटकते हैं ना, तो उनका ध्यान जमीर को परेशानी में डाल देता है। मेरा 2 फ्लोर का रो हाउस है, हाँ गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। सिक्किम में आए आज पूरे 7 महीने हो गए। मैं गहरी नींद में था और एकदम से डर के उठ गया। अंधेरे में थोड़ा सहम सा गया था। मैंने बगल में रखा लैंप चालू किया और घड़ी की ओर देखा तो रात के कुछ 3:30 बज रहे थे। मेरा ध्यान तुरंत शांतनु की ओर गया तो वो अपने बेड पे नहीं था। मैं शांतनु को आवाज देते हुए सीढ़ियां उतरने लगा तो नीचे हॉल में भी वो नहीं था। मैं बाहर गार्डन में गया तो वहां भी नहीं। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा पानी पी के उसे फोन करता हूं। डाइनिंग टेबल पर पानी का जग रखा था और उसके नीचे दबी थी एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था,
भैया चिंता मत करना, घर से बाहर मत निकलना, मुझे हेडक्वार्टर से बुलावा आया है, सुबह तक घर आ जाऊंगा।
अब मेरी नींद तो उड़ ही चुकी थी। मैंने द लॉस्ट सिटी के बचे हुए चैप्टर्स पढ़ना शुरू कर दिया और घड़ी की ओर देखा तो उसमें 4:50 हो रही थी। और 4:50 पे मेरे घर की बेल बजी। मैंने कहा, आ गया शांतनु। मैंने पेज नंबर 321 पर बुकमार्क लगाया और दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, मेरा बैकयार्ड का दरवाजा खुला था। शक हुआ और मैं तुरंत उसकी तरफ भागा। उस दरवाजे से खून की कुछ बूंदें घर के अंदर डाइनिंग टेबल तक जा रही थी। टेबल पर रखी मेरी किताब पर एक खून से भरा पूरे हाथ के आकार का प्रिंट था। मैंने टेबल के नीचे देखा तो एक आदमी खून से पूरा लथपथ था। वो नेपाली मालूम होता था। टेबल के नीचे से उसे बाहर निकालने के लिए जैसे मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तभी शांतनु का फोन आया।
हेलो भैया, एक आदमी नेपाल की बॉर्डर क्रॉस करके भागा है। अभी पता चला है कि AFA कॉलोनी में गया है। वो जनरल नायक ने वैसे उसे शूट कर दिया है। आप जरा संभल के और दरवाजे बंद रखना।
मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। गोली उसकी बाईं ओर की छाती को छू के निकली थी। जितना मलम पट्टी कर सकता था कर दिया। अब 5:30 बज गए थे और मेरे पास वक्त नहीं था। मुझे उससे सवालात करने थे और उससे सवालात करना बहुत ज्यादा जरूरी था। नाम क्या है तुम्हारा? मैंने थोड़ा सख्ती से पूछा।
डॉक्टर तनरीफ कैसो।
क्यों भाग रहे हो?
नहीं बता सकता।
मैंने उसकी एक उंगली मोड़ दी।
बताता हूँ।
जल्दी बोल। मैंने अपनी रिवॉल्वर उसकी छाती के ठीक उधर रखी जहां उसे पहले ही गोली लग चुकी थी।
पूरी दुनिया जिससे लड़ रही है उसे नेपाल भी लड़ रहा है। COVID-19। मेरी टीम ने इस वायरस का एंटीडोट बना लिया था। सही सलामत इसे टेस्ट करने के लिए लेके जाया जा रहा था। मैंने उस पेशेंट में जब इसे इंजेक्ट किया तो उसकी हालत और भी खराब हो गई। तब पता चला कि एंटीडोट बदल दिया गया है और ये मेरे असिस्टेंट ने किया था। वो इसे एक डीलर को बेचने वाला था जो इस एंटीडोट को हाई रेट पे मार्केट में लाएगा। जब मैं असिस्टेंट को लेके मेरे सीनियर के पास गया और ये बात बताई तो उसने कहा कि इसमें गलत क्या है। वो लोग ओरिजिनल एंटीडोट दिखा के डुप्लीकेट बाकी कंट्रीज में सप्लाई करने वाले थे। मैंने तब कुछ नहीं कहा और लेबोरेटरी में जाके सारे ओरिजिनल एंटीडोट डिस्ट्रॉय कर दिए। सिर्फ एक एंटीडोट बचा है और वो मेरे पास है।
उसने ये कहते हुए वो एंटीडोट मेरे सामने रखा और कहा,
उन्होंने मेरे बारे में यह अनाउंस कर दिया है कि मैं डुप्लीकेट एंटीडोट दूसरे देशों में सप्लाई करने वाला हूँ, और इसलिए मेरा पीछा कर रहे हैं ये सब।
तुम सरेंडर होके सच क्यों नहीं बता देते डिफेंस को?
मुझे सीधे शूट कर दिया जाएगा, सरेंडर होने का चांस ही नहीं।
एकदम से डोरबेल बजी। मैंने कहा चिंता मत करो, मेरा भाई होगा, विल डेफिनेटली हेल्प यू।
मैं दरवाजे की ओर बढ़ा तो शांतनु ने बैकयार्ड के दरवाजे से आके उसे शूट कर दिया। मैं गहरी नींद में था और एकदम से डर के उठा। अंधेरे में थोड़ा सहम गया था। मैंने बगल में रखा लैंप चालू किया और घड़ी की ओर देखा तो रात के कुछ 3:30 बजे थे। मैं तुरंत नीचे हॉल की तरफ भागा और डाइनिंग टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी जिसमें लिखा था,
भैया चिंता मत करना, मुझे हेडक्वार्टर से बुलावा आया है।